एकत्र एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। और आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जो लिखी तो गई थी कोई 2500 साल पहले, लेकिन यकीन मानिए उसकी बातें आज भी मतलब गजब की ताजा लगती है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं थ्यूसिडाइड्स की द हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर की। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक पुरानी लड़ाई की कहानी बिल्कुल नहीं है।
हाँ, ये तो एक तरह से चाबी है समझने की कि भाई देश क्यों लड़ते हैं, ये पावर, ये सत्ता काम कैसे करती है, और मुश्किल वक्त आता है तो इंसान का असली रूप कैसे सामने आता है।
सही कहा। आजकल भी दुनिया में देखिए कितने तनाव हैं, कौन ज्यादा ताकतवर है, इसकी होड़ लगी है। तो ऐसे में ये किताब एक जरूरी नजरिया देती है। मतलब इतिहास से ज्यादा ये सियासत और इंसान को समझने की गाइड लगती है।
एकदम टाइमलेस गाइड कह सकते हैं इसे।
तो चलिए जरा लेखक से मिलते हैं पहले। ये थ्यूसिडाइड्स थे कौन? सुनाए कोई आम इतिहासकार नहीं थे ये।
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। थ्यूसिडाइड कोई कमरे में बंद होकर लिखने वाले नहीं थे। वो खुद एथेंस के एक मिलिट्री जनरल थे, मतलब स्ट्रैटेगोस कहते थे उन्हें, और उन्होंने इस जंग में बाकायदा हिस्सा लिया था।
ओह, तो मतलब जमीनी हकीकत जानते थे वो।
हाँ बिल्कुल, और यही चीज उन्हें बहुत खास बनाती है। लेकिन फिर एक ट्विस्ट आया। एक लड़ाई में एम्फिपोलिस शहर स्पार्टा के हाथ लग गया और इसकी जिम्मेदारी थ्यूसिडाइड्स पर आई। नतीजा, उन्हें 20 साल के लिए एथेंस से निकाल दिया गया।
20 साल? पर ये तो उनके लिए बुरा हुआ होगा।
उनके लिए शायद हाँ, लेकिन इतिहास के लिए ये एक तरह से अच्छा साबित हुआ। इस निर्वासन, इस एग्जाइल ने उन्हें वो मौका दिया जो शायद एथेंस में रहते हुए नहीं मिलता।
अच्छा, क्या मौका?
उन्हें दोनों तरफ के लोगों से, एथेंस वालों से भी, स्पार्टा वालों से भी मिलने का, बात करने का, जानकारी इकट्ठा करने का मौका मिला। वो युद्ध को बाहर से एक ज्यादा ऑब्जेक्टिव नजरिए से देख पाए।
और उनसे पहले के इतिहासकार जैसे हेरोडोटस, वो कैसे लिखते थे?
हाँ, हेरोडोटस जैसे जो इतिहासकार थे वो अक्सर सुनी सुनाई बातें, दंत कथाएं, यहां तक कि देवताओं का रोल भी शामिल कर लेते थे अपनी कहानियों में। लेकिन थ्यूसिडाइड्स ने एक बिल्कुल अलग रास्ता पकड़ा।
क्या था वो रास्ता?
उन्होंने जोर दिया फैक्ट्स पर, सबूतों पर, और सबसे जरूरी इंसानी कारणों पर कि ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे इंसानों की क्या सोच थी, क्या डर थे, क्या लालच थे। उन्होंने अलग अलग सोर्स को क्रॉस चेक करने की कोशिश की। एक तरह से कहें तो इतिहास लिखने का एक ज्यादा साइंटिफिक, ज्यादा तर्कसंगत तरीका शुरू किया।
वाह, मतलब उन्होंने इतिहास को सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सबक की तरह देखा।
बिल्कुल, उनका मकसद था ऐसी चीज लिखना जो हमेशा के लिए एक धरोहर हो, भविष्य के लिए एक सबक। इसीलिए तो उन्हें वैज्ञानिक इतिहास का पिता भी कहा जाता है।
अच्छा, तो अब आते हैं किताब पर। ये है किस बारे में? पेलोपोनेशियन वॉर, ये क्या था?
ये जंग थी प्राचीन ग्रीस की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच। एक तरफ थी एथेंस, अपनी नेवी, डेमोक्रेसी और कल्चर के लिए जानी जाती थी। दूसरी तरफ थी स्पार्टा, अपनी जबरदस्त आर्मी, अनुशासन और मिलिट्री समाज के लिए मशहूर।
और इनके बीच जंग हुई?
हाँ, और कोई छोटी मोटी नहीं। पूरे 27 साल चली ये जंग, 431 ईसा पूर्व से 404 ईसा पूर्व तक। बहुत ही विनाशकारी, बहुत भयानक।
27 साल, बाप रे। लेकिन थ्यूसिडाइड्स के हिसाब से ये जंग हुई क्यों, क्या वजह थी?
देखिए, यहीं पर थ्यूसिडाइड्स का वो सबसे मशहूर आइडिया आता है जिसकी बात हम कर रहे थे। वो कहते हैं कि जो ऊपर ऊपर के कारण दिखते थे, जैसे कोरसायरा या पोर्टडिया जैसे शहरों को लेकर हुए झगड़े, वो तो सिर्फ बहाने थे, असली वजह कुछ और थी।
क्या थी असली वजह?
वो साफ लिखते हैं और ये लाइन बहुत अहम है। एथेंस की ताकत का बढ़ना और इससे स्पार्टा के मन में जो डर पैदा हुआ, उसी ने जंग को जरूरी बना दिया।
अच्छा, मतलब एक पावर बढ़ रही थी।
बिल्कुल।
और जो पहले से जमी हुई पावर थी उसे खतरा महसूस होने लगा, डर लगने लगा।
बिल्कुल, स्पार्टा को लगा कि एथेंस इतना ताकतवर हो जाएगा कि फिर उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। और इसी डायनेमिक को, इसी स्थिति को आज हम थ्यूसिडीडीज ट्रैप कहते हैं।
हाँ, सुना है इसके बारे में कि जब एक उभरती हुई शक्ति स्थापित शक्ति को चुनौती देती है तो लड़ाई का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये लगभग तैसा हो जाता है।
हाँ, थ्यूसिडीडीज का यही तर्क है। और वो कहते हैं कि देशों के एक्शन के पीछे तीन मेन मोटिवेशन होते हैं, डर, फियर, सम्मान या इज्जत, ऑनर, और अपना फायदा या हित, इंटरेस्ट। पूरी किताब में ये तीन चीजें बार बार सामने आती हैं।
दिलचस्प। तो चलिए अब जरा किताब के अंदर चलते हैं। पूरी 27 साल की कहानी तो नहीं सुना सकते, लेकिन कुछ जरूरी हिस्सों, कुछ अहम मोड़ पर बात करते हैं।
हाँ बिल्कुल। शुरू में थ्यूसिडाइड्स बताते हैं कि कैसे माहौल बना। स्पार्टा में गर्मा गर्म बहस होती है और वो जंग का फैसला कर लेते हैं। उधर एथेंस में उनके सबसे बड़े लीडर थे पेरिक्लीज। वो लोगों को समझाते हैं कि घबराओ मत।
क्या सलाह देते हैं पेरिक्लीज?
वो कहते हैं कि हमारी असली ताकत हमारी नेवी है और हमारा खजाना। स्पार्टा जमीन पर मजबूत है तो उन्हें आने दो। हम अपनी लंबी दीवारों लॉन्ग वॉल्स के पीछे सुरक्षित रहेंगे और समंदर से उन पर हावी होंगे।
और पेरिक्लीज का वो मशहूर भाषण भी तो है, शोक भाषण, फ्यूनरल ओरेशन जिसे कहते हैं।
हाँ हाँ बिल्कुल। युद्ध के पहले साल के बाद जो सैनिक मारे गए थे उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए पेरिक्लीज एक कमाल का भाषण देते हैं। उसमें वो एथेंस की तारीफ करते हैं, यहाँ का लोकतंत्र, यहाँ की आज़ादी, यहाँ का खुलापन। वो बताते हैं कि एथेंस क्यों खास है, क्यों इसके लिए लड़ना और मरना जायज़ है। ये एथेंस की एक बहुत ही आइडियलिस्टिक, एक ऊंची तस्वीर पेश करता है।
लेकिन कहते हैं कि इस ऊंची तस्वीर के ठीक बाद एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई।
हाँ बिल्कुल। अगले ही साल एथेंस में प्लेग फैल गया, एक भयानक महामारी, और थ्यूसीडाइड्स खुद इस बीमारी से बचे थे तो उन्होंने इसका जो वर्णन किया है वो रोंगटे खड़े कर देता है।
कैसा वर्णन?
वो बीमारी के लक्षण बताते हैं, कैसे लोग मर रहे थे, सड़कों पर लाशें थीं। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना वो बताते हैं कि समाज कैसे टूट गया। लोगों ने कानून मानना छोड़ दिया, धर्म कर्म भूल गए, रिश्ते नाते ताक पर रख दिए। बस एक डर था और अपनी जान बचाने की फिक्र। नैतिकता का पतन हो गया था पूरी तरह।
ओह, और पेरिक्लीस?
पेरिक्लीस की भी मौत इसी प्लेग में हो गई। एथेंस ने अपना सबसे बड़ा नेता खो दिया।
ये तो वाकई भयानक है। ये दिखाता है कि कैसे कोई बाहरी संकट किसी समाज को अंदर से तोड़ सकता है। तो पेरिक्लीस के बाद क्या हुआ? क्या युद्ध का रुख बदला?
हाँ बदला। पेरिक्लीस के बाद जो नेता आए जैसे क्लियोन, वो ज्यादा आक्रामक थे, ज्यादा आप कह सकते हैं लोक लुभावन टाइप के, और युद्ध और ज्यादा क्रूर होता चला गया। अब दया या संयम की बातें कम होने लगी।
कोई उदाहरण है इसका?
हाँ, एक बहुत मशहूर घटना है मिटिलिनियन बहस। मिटिलिनियन शहर था जिसने एथेंस से बगावत कर दी थी। जब एथेंस ने उन्हें हरा दिया तो क्लियोन ने असेंबली में प्रस्ताव रखा कि मिटिलिन के सारे मर्दों को मार दिया जाए और औरतों बच्चों को गुलाम बना लिया जाए।
क्या, सारे मर्दों को? ये तो हद है।
हाँ, और पहली बार में ये प्रस्ताव पास भी हो गया। लेकिन अगले दिन फिर से बहस हुई। डायोडोटस नाम के एक और नेता ने तर्क दिया कि ये ना सिर्फ गलत है बल्कि एथेंस के हित में भी नहीं है। बहुत बहस के बाद बड़ी मुश्किल से ये फैसला बदला गया। लेकिन ये घटना दिखाती है कि युद्ध कैसे सोच को बदल देता है। न्याय पीछे छूट जाता है, सिर्फ नफा नुकसान दिखा जाता है।
और वो भाषा बिगड़ने वाले बात, वो कहाँ आती है?
वो आती है जब थ्यूसीडाइड्स कोरसायरा नाम की जगह पर हुए गृह युद्ध का जिक्र करते हैं। वहां इतनी मारकाट मची, इतनी नफरत फैली कि शब्दों के मायने ही पलट गए। थ्यूसीडाइड्स लिखते हैं कि कैसे लापरवाह दुस्साहस को वफादार हिम्मत कहा जाने लगा और सोच समझकर पीछे हटने को कायरता का बहाना माना गया। मतलब जो असल में बुरा था उसे अच्छा नाम दे दिया गया। भाषा भी करप्ट हो गई थी।
बाप रे, युद्ध सिर्फ जाने नहीं लेता, लगता है सोच और भाषा को भी बीमार कर देता है।
बिल्कुल। और फिर आता है वो हिस्सा जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करता है, मिलियन संवाद।
हाँ, मिलियन डायलॉग, इसके बारे में बहुत सुना है। क्या था ये?
मेलोस एक छोटा सा द्वीप था जो युद्ध में किसी का पक्ष नहीं ले रहा था, न्यूट्रल था। एथेंस वाले अपनी बड़ी सी नेवी लेकर वहां पहुंचे और मेलोस वालों से कहा, देखो भाई, या तो हमारे नीचे आ जाओ, हमारी गुलामी मान लो, या फिर हम तुम्हें मिटा देंगे।
और मेलोस वालों ने क्या कहा?
मेलोस वालों ने कहा कि ये तो सरासर नाइंसाफी है, हम आजाद हैं, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें जीने दो। उन्होंने न्याय की, देवताओं की, स्पार्टा से मदद की उम्मीद की दुहाई दी।
लेकिन एथेंस?
एथेंस का जवाब बहुत ही ठंडा, बहुत ही क्रूर था। उन्होंने कहा, देखो, न्याय की बातें बराबर वालों में होती हैं। दुनिया का दस्तूर ये है कि ताकतवर वो करते हैं जो वो कर सकते हैं और कमजोर वो सहते हैं जो उन्हें सहना पड़ता है। सीधी बात, माइट इज राइट।
और नतीजा?
नतीजा, मेलोस ने झुकने से इनकार कर दिया। एथेंस ने शहर पर कब्जा किया, सारे मर्दों को मार डाला और औरतों और बच्चों को गुलाम बनाकर बेच दिया।
ये तो पेरिक्लीस के एथेंस से बिल्कुल अलग है।
बिल्कुल। ये दिखाता है कि ताकत के नशे में एथेंस कितना बदल चुका था। वो आदर्श, वो लोकतंत्र की बातें सब पीछे छूट गई थी। ये नग्न शक्ति प्रदर्शन था।
रोंगटे खड़े हो गए सुनके।
ये
इसके बाद क्या हुआ? सुना है एथेंस ने एक बहुत बड़ी गलती की।
हाँ, इसके बाद ही हुआ वो विनाशकारी सिसिली अभियान, सिसिलीन एक्सपेडिशन। ये किताब के दो हिस्से, बुक 6 और 7, इसी पर हैं। ये कहानी का एक तरह से क्लाइमैक्स है।
क्या था ये अभियान?
एथेंस ने खासतौर पर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और सच कहें तो थोड़ा अविश्वसनीय नेता था, एलसीबीआईडीज। उसके उकसाने पर सिसिली के बहुत बड़े और ताकतवर शहर सिराक्यूज पर हमला करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अगर सिराक्यूज जीत लिया तो उनकी ताकत और दौलत बहुत बढ़ जाएगी। एक बहुत बड़ी शानदार नेवी भेजी गई,
लेकिन प्लान कामयाब नहीं हुआ।
कामयाब होना तो दूर, ये एथेंस के लिए तबाही बन गया, बुरी तरह फेल हुआ। शुरू से ही गड़बड़ होने लगी। एलसीबीआरडीज पर कुछ आरोप लगे और वो डर के मारे भागकर स्पार्टा चला गया, और वहां जाकर उसने स्पार्टा वालों को एथेंस के सारे प्लान बता दिए।
अरे बाप रे, गद्दारी।
हाँ, और फिर कमान आई निकियास के हाथ में, जो एक अच्छा आदमी था लेकिन हिचकिचाता बहुत था, फैसले नहीं ले पाता था। नतीजा, सिराक्यूज में एथेंस की सेना और नेवी बुरी तरह फंस गई। स्पार्टा ने भी सिराक्यूज की मदद भेज दी,
और अंत में
भयानक हार हुई। लगभग पूरी एथेनियन फोर्स या तो मारी गई या पकड़ ली गई। हजारों सैनिक, सैकड़ों जहाज, सब खत्म। एथेंस की कमर टूट गई इस हार से। उनका पैसा, उनकी इज्जत, उनकी मिलिट्री पावर, सब कुछ चकनाचूर हो गया।
ये तो बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद किताब कैसे खत्म होती है?
यहीं पर एक अजीब बात है। किताब अचानक खत्म हो जाती है। सिसिली की हार के बाद युद्ध और 7 साल चला। एथेंस ने थोड़ी वापसी भी की, कुछ लड़ाइयां जीती भी। एथेंस में राजनीतिक उथल पुथल भी हुई। लोकतंत्र हटाकर कुछ अमीरों का राज आया, फिर लोकतंत्र वापस आया। लेकिन थ्यूसीडाइड्स ये सब पूरा नहीं लिख पाए। किताब 411 ईसा पूर्व में एक वाक्य के बीच में ही एकदम से रुक जाती है।
अच्छा, ये तो अधूरा अंत हुआ। खैर, इतने सारे घटनाक्रम, इतना विश्लेषण, अगर हमें कुछ निचोड़ निकालना हो, कुछ मुख्य संदेश, तो वो क्या होंगे?
देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात जो थ्यूसीडाइड्स हमें सिखाते हैं वो है पॉलिटिकल रियलिज्म, यानी राजनीतिक यथार्थवाद। उनका मानना था कि देश आदर्शों या नैतिकता से नहीं चलते, वो चलते हैं अपने हितों से, डर, सम्मान और फायदा। यही असली मोटिवेशन है।
हाँ, वो मिलियन डायलॉग वाली बात।
बिल्कुल, वो इसका सबसे कड़वा लेकिन शायद सबसे साफ उदाहरण है। ताकत का पड़ला भारी रहता है।
और दूसरा संदेश, जाहिर है, वो थ्यूसीडाइड्स ट्रैप।
हाँ, कि जब एक पावर बढ़ रही हो और दूसरी को उससे खतरा लगे तो टकराव का चांस बहुत ज्यादा होता है। ये आज भी देखिए, अमेरिका और चीन के बीच जो तनाव है उसे समझने के लिए अक्सर इसी थ्योरी का इस्तेमाल होता है।
बिल्कुल। तीसरा संदेश क्या कहेंगे?
तीसरा है इंसानी फितरत की स्थिरता। थ्यूसीडाइड्स को पक्का यकीन था कि डर, लालच, महत्वाकांक्षा, ये चीजें इंसान के स्वभाव का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगी। इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि उनकी किताब भविष्य के लिए है, क्योंकि इतिहास खुद को दोहराएगा, क्योंकि इंसान का स्वभाव नहीं बदलता। और देखिए, 2500 साल बाद भी उनकी बातें कितनी सटीक लगती हैं।
सच में। चौथा संदेश क्या हो सकता है? शायद युद्ध का बुरा असर।
हाँ, युद्ध का भ्रष्ट करने वाला असर। हमने देखा प्लेग के वक्त समाज कैसे बिखरा, कोर्सायरा में भाषा कैसे विकृत हुई, एथेंस अपने ही बनाए ऊंचे आदर्शों से कैसे गिर गया। लंबा चलने वाला संघर्ष या तनाव किसी भी समाज को, उसके मूल्यों को, उसकी नैतिकता को धीरे धीरे खत्म कर सकता है। हम अपने आसपास भी कभी कभी देखते हैं ना कि कैसे लगातार का तनाव या झगड़ा हमारे बात करने के तरीके, हमारी सोच को बदल देता है।
हाँ, महसूस होता है कभी कभी। और पांचवा, लोकतंत्र के बारे में कुछ?
बिल्कुल, पांचवा संदेश है लोकतंत्र, लोक लुभावनावाद और नेतृत्व के बारे में। एथेंस का लोकतंत्र पेरिक्लीज जैसे समझदार, दूरदर्शी नेता के समय में अपनी ऊंचाई पर था, लेकिन उनके जाने के बाद वो क्लियोन जैसे नेताओं के जोशीले लेकिन शायद कम समझदारी वाले भाषणों के बहकावे में आ गया, और नतीजा सिसिली जैसा आत्मघाती फैसला।
ये तो बहुत बड़ी सीख है कि लोकतंत्र में सिर्फ जनता की आवाज ही नहीं, बल्कि उस आवाज को सही दिशा देने वाला नेतृत्व भी जरूरी है।
सही कहा। ये आज भी हर बड़े लोकतंत्र के लिए सोचने वाली बात है कि कैसे भावनाओं और तर्क के बीच संतुलन रखा जाए।
और कोई मुख्य संदेश, शायद भाग्य और कोशिश के बारे में?
हाँ, छठा कह सकते हैं, किस्मत और इंसान की कोशिश का खेल। थ्यूसीडाइड्स मानते थे कि हमें सोच समझकर प्लान बनाना चाहिए, तर्क से काम लेना चाहिए, जिसे वो ग्नोम कहते हैं, लेकिन जिंदगी में अचानक कुछ भी हो सकता है, जिसे वो टाइकी कहते हैं, जैसे प्लेग आ गया या मौसम खराब हो गया। अच्छा लीडर वो है जो प्लान तो बनाता है पर यह भी जानता है कि सब कुछ उसके हाथ में नहीं है, वो किस्मत का भी ध्यान रखता है।
ये तो हुई मुख्य बातें। इस किताब में कुछ पंक्तियां भी ऐसी हैं जो सीधे असर करती हैं ना, कुछ यादगार कोट्स या विचार?
हाँ बिल्कुल, हैं, कई हैं। पहली तो वही जो हमने पहले भी कही, जो पूरी किताब का निचोड़ है। एथेंस की ताकत का बढ़ना और इससे स्पार्टा में जो डर पैदा हुआ, उसी ने जंग को जरूरी बना दिया। ये थ्यूसीडाइड्स ट्रैप का सिद्धांत है।
सही। और दूसरी वो मेलोस वाली।
हाँ, वो तो भूलना मुश्किल है। ताकतवर वो करते हैं जो वो कर सकते हैं, और कमजोर वो सहते हैं जो उन्हें सहना पड़ता है। ये शायद पावर पॉलिटिक्स का सबसे क्रूर, सबसे बेलाग बयान है।
ओफ, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी हैं पेरिक्लीज के भाषण से।
हाँ बिल्कुल, पेरिक्लीज के शोक भाषण से ये लाइन, हमारा संविधान लोकतंत्र कहलाता है क्योंकि सत्ता कुछ लोगों के हाथ में नहीं बल्कि सभी लोगों के हाथ में है। ये दिखाता है कि एथेंस किस आदर्श के लिए खड़ा था, कम से कम शुरुआत में।
और एक और शायद युद्ध के बारे में।
हाँ, कॉर्सायरा के बारे में लिखते हुए वो कहते हैं, युद्ध एक हिंसक शिक्षक है, वॉर इज अ वॉयलेंट टीचर। ये छोटी सी लाइन बहुत गहरी बात कहती है। युद्ध इंसानियत का नकाब उतार देता है और हमें हमारी असली, कभी कभी बहुत बुरी फितरत दिखा देता है।
ये सारी बातें सुन के लगता है कि ये किताब सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि जिंदगी का सबक है। तो सवाल ये है कि आज के जमाने में हम इस 2500 साल पुरानी किताब से क्या सीख सकते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
देखिए, कई तरीके हैं। पहला तो जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को समझने के लिए। ये थ्यूसिडाइड स्ट्रैप वाली बात हमें बताती है कि देशों के बीच तनाव क्यों पैदा होता है, कैसे डर और अपने हित शांति की राह में रोड़ा बन सकते हैं।
और दूसरा?
दूसरा, राजनीति और समाज के लिए। यह हमें सिखाता है कि लोकतंत्र कितना नाजुक हो सकता है, लोक लुभावन नारों के खतरे क्या हैं, और ठंडे दिमाग से तथ्यों पर आधारित बहस कितनी जरूरी है। यह हमें याद दिलाता है कि भावनाओं में बहकर फैसले लेना कितना खतरनाक हो सकता है।
सही बात है। तीसरा?
शायद लीडरशिप के लिए।
हाँ बिल्कुल,
चाहे आप ऑफिस में टीम लीड कर रहे हो या देश चला रहे हो। पेरिक्लीज जो दूर की सोचते थे, निकियास जो फैसला नहीं ले पाते थे, क्लियोन जो बहुत आक्रामक थे, एलसीबीआईडीज जो टैलेंटेड तो थे पर भरोसेमंद नहीं, इन सब के किरदारों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे बड़ा सबक अहंकार, हद से ज्यादा आत्मविश्वास आपको ले डूबता है, जैसे सिसिली में एथेंस डूबा।
अहंकार से बचना। और चौथा?
नैतिकता के बारे में। चौथा है मुश्किल वक्त में नैतिकता का सवाल। प्लेग के दौरान मिलियन संवाद में हमने देखा कि कैसे जब संकट आता है तो सही गलत के नियम, नैतिक सिद्धांत कितनी आसानी से टूट जाते हैं, कैसे लोग जरूरत या मजबूरी का नाम लेकर गलत चीजों को भी सही ठहराने लगते हैं। ये हमें आज के संकटों, चाहे वो कोई महामारी हो, आर्थिक मंदी हो या राजनीतिक उथल पुथल, उसमें इंसानी बर्ताव को समझने में मदद करता है।
हाँ ये बात तो है, मुश्किल समय में ही असली परीक्षा होती है।
बिल्कुल, ये किताब हमें उसी परीक्षा के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।
तो इस पूरी चर्चा के बाद अगर मैं कहूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही, तो वो शायद ये है कि जमाना बदल गया है, तकनीक बदल गई है, लेकिन इंसान की जो मूल प्रवृत्ति है, उसका डर, उसकी इज्जत की भूख, अपना फायदा देखने की आदत, वो शायद आज भी वैसी है। ये किताब एक आईने की तरह है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि हम कैसे गलतफहमी, घमंड और डर के चक्कर में पड़कर बड़ी बड़ी गलतियां कर सकते हैं।
और मेरे लिए ये किताब सभ्यता की नाजुकता को दिखाती है, दिखाती है कि लोकतंत्र जैसी अच्छी चीजें भी कितनी आसानी से पटरी से उतर सकती हैं अगर सही नेतृत्व ना हो, अगर लोग सोच समझ कर फैसले ना लें। थ्यूसिडाइड्स का कमाल यह है कि वो सिर्फ क्या हुआ नहीं बताते, वो क्यों हुआ की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। ये ताकत इंसान और इतिहास पर एक बहुत गहरा और, सच कहूं तो कभी कभी थोड़ा बेचैन कर देने वाला चिंतन है। ये हमें सवाल पूछने की हिम्मत देता है, अपने आप से भी और अपने नेताओं से भी।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।